नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आज का दिन भारत के किसानों के लिए बड़ा दिन है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ रुपए बैंक ट्रांसफर किए हैं। पीएम मोदी ने अपनी हिमाचल प्रदेश की यात्रा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये ट्रांसफर किया। आप भी अपनी किश्त का स्टेटस पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। शेयर बाजारों में 3 दिनों से जारी तेजी पर मंगलवार को विराम लग गया और बीएसई सेंसेक्स 359.33 अंक टूटकर बंद हुआ। HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के बीच ये गिरावट आई। कारोबारियों के अनुसार GDP के आंकड़े जारी होने से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भी बाजार की धारणा पर असर पड़ा। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 359.33 अंक गिरकर 55,566.41 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 556.6 अंक तक लुढ़क गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 76.85 अंक की गिरावट के साथ 16,584.55 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, HDFC, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक के शेयरों में गिरावट रही। वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील के शेयर लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग मजबूती के साथ बंद हुए, जबकि जापान का निक्की गिरावट लेकर बंद हुआ। भारत ने मंगलवार को कहा कि उसने 40,000 टन डीजल की एक और खेप श्रीलंका को भेजी है। पड़ोसी देश श्रीलंका बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहां लोगों को ईंधन की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी। इस राशि का इस्तेमाल श्रीलंका को ईंधन आपूर्ति के लिए किया जाना है। श्रीलंका जरूरी वस्तुओं के आयात का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार बेहद घट गया है। भारत ने गत 23 मई को श्रीलंका को करीब 40,000 टन पेट्रोल भेजा था। भारतीय उच्चायोग ने ट्विटर पर एक संदेश में कहा, भारत की ओर से सहायता के तहत 40,000 टन डीजल की खेप सोमवार शाम को कोलंबो पहुंची। पड़ोसी देश को पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने के लिए 2 फरवरी 2022 को भारत ने एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने या उनके निर्यात को सीमित करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि चावल की आपूर्ति और कीमतें नियंत्रण में हैं। इससे पहले सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और एहतियाती कदम के रूप में चीनी विपणन वर्ष 2021-22 में चीनी के निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित कर दिया था। इसके बाद खबर आई कि चावल के निर्यात को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस खबर के बीच ये टिप्पणी आई है। अधिकारी ने कहा, किसी भी तरह के चावल के निर्यात को विनियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारे गोदामों में और यहाँ तक कि निजी व्यापारियों के पास भी पर्याप्त भंडार है। घरेलू कीमतें भी अभी नियंत्रण में हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। भारत ने 2021-22 में 6.11 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर बासमती चावल का निर्यात किया था। इस दौरान 150 से अधिक देशों को गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया। यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले यूरोपीय संघ में मुद्रा स्फीति मई के महीने में 8.1% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ईंधन की लागत बढ़ने की अहम भूमिका रही है। यूरोप के 19 देशों के इस समूह में मार्च और अप्रैल के महीनों में भी मुद्रा स्फीति 7.4% के उच्च स्तर पर रही थी। यूरोपीय संघ की सांख्यिकीय संस्था यूरोस्टैट ने मंगलवार को बताया कि मई 2022 में ऊर्जा उत्पादों की लागत बढ़ने से मुद्रा स्फीति 8.1% के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस दौरान ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में 39.2% की भारी वृद्धि देखी गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। प्रमुख तेल एवं गैस निर्यातक रूस पर यूरोपीय देशों ने पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से उनकी ऊर्जा लागत बढ़ गई है। इस महंगाई ने यूरोपीय संघ में रहने वाले 34.3 करोड़ लोगों की जिंदगी को भी मुश्किल बना दिया है। यूएई ने मंगलवार को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये पहला मौका है जब इसराइल ने किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। इससे पहले यूएई वर्ष 2020 में अमेरिका के समर्थन से इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुआ था। तब से दोनों देशों ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ट्विटर पर लिखा है, इसराइल और यूएई ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसी अरब देश के साथ किया गया ये इस तरह का पहला समझौता है। देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी एफटीए को इतनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचाया गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।